ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் வைதிக் சாந்தி மந்த்ரா பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஹரிஹரானந்த சாகர்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
தத்சத்ப்ரஹ்மணே நமஹ. ஓம் சாந்திஹ் சாந்திஹ் சாந்திஹ். சிவாய நம. ஓம் சிவாய நம. ஓம் சிவாய நம. ஓம் நம சிவாய. சிவாய நம. ஓம் சிவாய நம. ஓம் சிவாய நம. ஓம் நம சிவாய. ஹராய நம. ஓம் ஹராய நம. ஓம் ஹராய நம. ஓம் நம சிவாய.
ஹராய நம. ஓம் ஹராய நம. ஓம் ஹராய நம. ஓம் நம சிவாய.
ஹராய நம. ஓம் ஹராய நம. ஓம் ஹராய நம. ஓம் நம சிவாய.
ஹராய நம. ஓம் ஹராய நம. ஓம் ஹராய நம. ஓம் நம சிவாய.
சிவாய நம. ஓம் நம சிவாய.
சிவாய நம. ஓம் நம சிவாய.
ஹராய நம. ஓம் நம சிவாய.
ஹராய நம. ஓம் நம சிவாய.
சச்சிதானந்த பகவான் கீ. आदरणीय स्वामी जी, तत्व जिज्ञासु सज्जनों, हम लोग वैदिक शांति पाठ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। क्रम से पढ़े जाने वाले 10 वैदिक शांति मंत्रों में हम लोग छठे क्रम का सामवेदीय शांति पाठ का विचार कर रहे हैं। ओम आप्यायन्तु.
ओम आप्यायन्तु.
ममांगानि.
ममांगानि.
वाक.
वाक.
प्राण.
प्राण.
चक्षुः.
चक्षुः.
श्रोत्रमथो.
श्रोत्रमथो.
बलमिन्द्रियाणि च.
बलमिन्द्रियाणि च.
सर्वाणि.
सर्वाणि.
सर्वम्.
सर्वम्.
ब्रह्मोपनिषदम्.
ब्रह्मोपनिषदम्.
माहम्.
माहम्.
ब्रह्म.
ब्रह्म.
निराकुर्याम्.
निराकुर्याम्.
மா.
மா.
ब्रह्म
निराकरो
दनिराकरणमस्त्व निराकरणमस्तु
निराकरणमस्तु
तदात्मनि
तदात्मनि
निरते
निरते
यः उपनिषत्सु
उपनिषत्सु
धर्मास्ते
धर्मास्ते
मयि
मयि
संतु
संतु
ते मयि संतु ॐ शान्तिः
शान्तिः
शान्तिः शान्तिः। तो देखिए ये जो शांति पाठ है, जैसे कि आपको बताया कि सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद में ये मंगल रूप में पठित है, और ब्राह्मण भाग के छांदोग्य उपनिषद में भी ये पठित है। विघ्न निवृत्ति के लिए जैसा कि आपको बताया कि मंगल पाठ किया जाता है, मंगल पाठ में परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि हम यदि वेदाध्ययन करने के लिए प्रवृत्त हो तब हमारा ये जो पूरा कार्यकरण संघात है वो अनुकूल हो जाए, क्योंकि उपनिषद जो ब्रह्म है, उपनिषद प्रतिपाद्य जो तत्व है ब्रह्म है, उसका ज्ञान अग्रबुद्धि से होता है। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, सूक्ष्म दृष्टि, और वो तभी होगी जब हमारा पूरा कार्यकरण संघात वो संयत हो। इसलिए प्रार्थना की जा रही है। तो ये शांति पाठ के अंदर जो कही गई प्रार्थना है उनको समझने के लिए, शांति पाठ का जो हार्द है, उनकी जो गहराई है, वो गहराई तक जाने के लिए, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि इसके 7 वाक्य बनते हैं शांति पाठ के। 2 वाक्यों के ऊपर कल हम लोगों ने विचार किया था। पहला वाक्य बनाया था, मम अंगानी वाक प्राण चक्षु श्रोत्रम च सर्वाणि इंद्रियाणि चाप्यायन्तु। इसका अर्थ है कि मुमुक्षु प्रार्थना करते हुए यहां पर कहते हैं कि मेरे जो अंग है वो आप्यायन्तु। आप्यायन्तु यानी कि पुष्ट हो, पुष्ट हो यानी कि शरीर से, अन्न जल से तो ठीक है पुष्टि अलग है, किंतु यहां पुष्टि का अर्थ है ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो जाए। मेरे सभी अंग है वो ब्रह्म प्राप्ति के लिए उत्सुक हो जाए, तैयार हो जाए, तद अनुकूल हो जाए। कौन कौन से अंग? तो खुद बताया, वाक वाणी, और वाणी से कर्मेंद्रिय पंचक ले लेना है। फिर कहा चक्षु श्रोत्रम, चक्षु और श्रोत्रम को उपलक्षण मान करके ज्ञानेन्द्रिय पंचक ले लेना है, और प्राण, प्राण से प्राण पंचक ले लेना है। तो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय और प्राण, ये जो सब है वो और सर्वाणि इंद्रियाणि, इससे ये भी ले लीजिए बाह्य इंद्रिय अंतर इंद्रिय सब ले लीजिए। बाह्य इंद्रिय वो है जो बाहर की ओर देखती है, बाह्य पदार्थों को जो देखती है। ज्ञान इंद्रिय है वो किसको देखती है? बाहर। कर्म इंद्रिय जो कर्म करती है। अंतर इंद्रिय है मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण जिसको कहते हैं, अंतः यानी अंदर के करण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो भी आप्यायन्तु, यानी कि ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो। देखिए आप अध्ययन करने बैठे और इंद्रिया यदि चंचल है, कहीं अन्यत्र जा रही है, मन अन्यत्र जा रहा है, तो क्या श्रुतार्थ ग्रहण होगा? नहीं। मन दो पांच सेकंड के लिए भी विचलित हो गया, व्यग्र हो गया या अन्यत्र चला गया, और फिर पूछो क्या सुना, तो तुरंत कहेंगे कि अरे पता ही नहीं चला, मेरा तो ध्यान ही नहीं था। वो ध्यान कहां गया था? अन्यत्र चला गया। तो विक्षेप हुआ कि नहीं? फिर वेदार्थ समझ में नहीं आएगा। ग्रंथार्थ का जब तक श्रवण ही नहीं होगा, तब तक जो है फिर विस्मरण की बात तो दूर। इसलिए श्रवण के लिए ध्यान किधर चाहिए? अध्ययन की ओर। और यदि नहीं है तो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं कि मेरा ध्यान नहीं था, तो ध्यान किधर होना चाहिए? ये जो है ब्रह्म की ओर। इसलिए भावना की गई कि ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो जाए, अन्यत्र न जाए, किंतु ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो जाए। ये एक वाक्य हुआ, इसका विचार हम लोग कर चुके इस वाक्य का। अब दूसरा वाक्य ये है सर्वम औपनिषदम ब्रह्म, ये दूसरा वाक्य है। इसमें ये कहा गया कि सर्वम औपनिषदम ब्रह्म, सर्वम से ग्राह्य है पांच भौतिक संसार, दृश्यमान सारा संसार वो सर्व शब्द से ग्राह्य है। और वो जो ब्रह्म से अतिरिक्त हम जिसको मानते हैं, वो यहां तक कि जो संसार हमने देखा नहीं है वो भी, द्वीप दीपांतर जो भी है, स्थावर जंगम कहने से सब आ गया, वो सारा संसार क्या है? तो कहा औपनिषदम ब्रह्म एव, वो सारा संसार ब्रह्म है। ये कब अनुभव होगा ऐसा? जैसे कि ये जो पूरा कार्यकरण संघात ये उपनिषद के श्रवण में लगे, और मनन निधिध्यासन पूर्वक जब ये श्रवण में लगे, तो ये अनुभव होगा कि सर्वम औपनिषदम ब्रह्म, ये जो संसार में जो भी है दिखता है वो सब क्या? ब्रह्म है, ऐसा अनुभव होगा। ईशावास्यमिदगुम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, कहा कि नहीं? ये सारा संसार जो है ना ईश से आच्छाद्य है, आच्छादन करने योग्य। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि ईशा परमेश्वर के द्वारा ये आच्छादनीय है। अध्यारोप को हटाना तो सर्वत्र क्या दिखेगा? ब्रह्म दिखेगा। अर्थात कि ब्रह्म सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्वा भाव, ब्रह्म सत्ता अतिरिक्त सत्ता शून्य, जो भी हमको संसार दिख रहा है वो ब्रह्म सत्ता से अतिरिक्त नहीं है। कटक कुंडल आदि जो भी है वो सुवर्ण से अतिरिक्त नहीं है। घट शराब आदि है वो मृतिका से अतिरिक्त नहीं है। तो वो क्या है जिसको हम व्यवहार में लाते हैं? घट शराब आदि है, कटक कुंडलादि है, उनका व्यवहार करते हैं, वो क्या है? तो कहा वाचा रंभणम विकार, कल बताया था ना? वो केवल वाणी का विषय मात्र है, वाद आलंबन मात्रम। भगवान भाष्यकार वहां कहते हैं वाचारंभणम का अर्थ करते वाग आलंबन मात्रम, वाणी का विषय मात्र है, वाणी से केवल उनको बोल सकते हैं किंतु उसकी पृथक सत्ता आप स्थापित नहीं कर सकते हैं। घट शराब आदि की सत्ता मृतिका से अतिरिक्त नहीं है। यदि आप घट को मृतिका से अलग करने जाओगे तो घट नाम की कोई चीज ही हाथ में नहीं आएगी। और वर्तमान में घट जब दिख रहा है, घट में हम पानी भी भर रहे हैं, उस समय भी हम यही निश्चय करके रखे कि ये मृतिका से अतिरिक्त इसकी कोई सत्ता नहीं है। इसी को छांदोग्य में बताया, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वम मृण्मयम विज्ञातम स्याद वाचारंभणम विकारो नामधेय मृतिकेत्येव सत्यम। वेदांत का सिद्धांत, एक ब्रह्म का ज्ञान हो जाए तो सबका ज्ञान हो जाता है। उद्दालक जी ने श्वेत केतु को पूछा कि तम आदेशम अप्राक्ष्य येन अश्रुतेन श्रुतम अमतेन मतम अविज्ञातेन विज्ञातम भवति इति। श्वेत केतु तो सुनकर के दंग रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। बड़ा विचलित हो गया कि पिताजी ये कैसे हो सकता। तो पिताजी ने दृष्टांत के द्वारा बताया, अभी जो मैंने उच्चारण किया यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन इत्यादि मंत्र का, कहा जैसे एक मृतिका के पिंड से बने हुए जितने भी घट शरावादी है वो सब ये मृतिका है, ऐसा जान लेने से सबका ज्ञान हो जाता है। फिर अलग से ये घट है वो मृतिका है कि नहीं है, शराब वगैरह कल कुल्हड़ वगैरह ये सब मृतिका है या मृतिका से अतिरिक्त है, उसको अलग से जानने की जरूरत रहती नहीं है। कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि कारण से कार्य की भिन्न सत्ता नहीं है। मृतिका की सत्ता से ही घट शराब आदि की सत्ता है, इस तरह से ये ब्रह्म सत्ता से ही ये सारे संसार की सत्ता है। ब्रह्म नहीं है तो संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। अच्छा एक यहां बात बताइए, सर्वम ब्रह्म एव ये तो ठीक है, किंतु औपनिषदम ब्रह्म एव ऐसा कहा, ये जो है वो सब कैसा है? औपनिषदम ब्रह्म, ये बहुत विलक्षण है। ब्रह्म तो ठीक है किंतु औपनिषदम, देखो ये तभी समझ में आएगा जब उपनिषद का अध्ययन करेंगे। ब्रह्म कैसा है? उपनिषद एक समधिगम्य, शास्त्र के द्वारा ही जिसका ज्ञान होता है उसको कहते हैं औपनिषदम ब्रह्म। या आपको कर चरणादि से चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा वो नहीं दिखेगा, किंतु किससे? तो कहते हैं केवल शास्त्र से। ये जो सारे संसार के अंदर परमात्मा व्याप्त है वो आप उसको बाहर अन्य प्रमाण से ढूंढने के लिए जाएंगे तो कहीं भी नहीं मिलेगा। वो केवल उपनिषद के द्वारा, उपनिषद के श्रवण से ही ये पता चलेगा। इसलिए ब्रह्म है वो औपनिषदम है, अन्य प्रमाण से आप उनको नहीं जान सकते। इसलिए जो उपनिषद को नहीं मानते, वेद को प्रमाण रूप से नहीं मानते, वो लोग ईश्वर को भी नहीं मानते, क्योंकि ईश्वर का जो है अस्तित्व केवल शास्त्र के द्वारा ही है। यदि शास्त्र वाक्य नहीं है तो आप ईश्वर का अस्तित्व आप सिद्ध ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात है कि ये सारा संसार है वो परमेश्वर से ही उत्पन्न होता है, ये बात भी आप शास्त्र के द्वारा ही जान सकते हैं, अन्य किसी प्रमाण से नहीं। आचार्य बादरायण जी ने जब ब्रह्म जिज्ञासा का सूत्रण किया कि जिज्ञासा करनी चाहिए ब्रह्म की, तो प्रश्न उठा कि ब्रह्म है क्या, ब्रह्म का क्या लक्षण है, तो कहा जन्माद्यस्य यतः, जिससे ये सारे संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय जिससे है उसको कहते हैं ब्रह्म। और इस अधिकरण में वो तैतरीय श्रुति का विचार किया, यतो वा इमानी भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते विसंविशन्ति तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व। अब यही कहा यतः, जिससे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, जिसमें रहते हैं और जिसमें लीन हो जाते हैं, तद् ब्रह्म वो ब्रह्म है और वो विजिज्ञासस्व वो जिज्ञास्य है। तब ये सारा संसार जो है परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, ये बात भी केवल उपनिषद से ही जानी जा सकती, अन्य किसी प्रमाण से नहीं, प्रत्यक्ष से भी नहीं, अनुमान से भी नहीं, केवल उपनिषद के द्वारा। इसलिए कहा शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र से ही जान सकते, ईश्वर को ही शास्त्र से ही आप जो है सिद्ध कर सकते, अन्य किसी प्रमाण से नहीं। ठीक है, ये जो संसार है वो ईश्वर की साबिती है, ब्रह्म की साबिती है, किंतु वो ब्रह्म कैसा है, ये जो संसार को बनाने वाला जो ब्रह्म है वो कैसा है, वो केवल उपनिषद से ही पता चलेगा, अन्य किसी प्रकार से नहीं। इसलिए ये जो संसार ऐसा है, इसलिए मानना ही होगा कि ये संसार ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य किसी भी कारण से बन भी नहीं सकता है, क्योंकि ये जो संसार है वो नाम और रूप से व्याकृत है। भगवान भाष्यकार ने कहा था नाम रूपाभ्याम व्याकृत, अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्त, प्रतिनियत देश काल क्रिया फलाश्रय मनसापि अचिंत्य, ऐसा जो संसार है उनको ब्रह्म से अतिरिक्त और कोई बना ही नहीं सकता। आजकल एक पुस्तक बहुत प्रसिद्ध हो रही है, द ग्रैंड डिजाइनिंग, वो कोई इंग्लैंड में कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है,